हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के आठवें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और आप तो सब जानते भी होंगे भगवान के आने का प्रयोजन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इससे पहले कि हम आगे प्रवचन करें, ये जो पहली दो लाइनें हैं ये कहाँ पे देखी हैं आपने? भगवद गीता के अलावा कहीं लिखी हुई देखी हैं आपने भारत में? कहाँ? पुलिस के बाद पुलिस भी ड्राइव करती है इसी तरह से, और एयरफोर्स भी भगवद गीता के श्लोक को से अपने जो लक्ष्य है उसको देखते हैं कि हम लोग आकाश, जैसे भगवान आकाश में सब जगह व्याप्त हो रहे हैं, हम भी आकाश से ऊपर से बम गिराएंगे ऐसे करके। तो लेकिन ठीक है, अर्थ बड़ा स्पष्ट है, साधुओं के परित्राण के लिए और जो दुष्कृति हैं असुर हैं उनके विनाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान युग युग में आते हैं। क्या आपको इसमें भगवान के आने के तीन कारण स्पष्ट दिख रहे हैं? क्या है पहला कारण? साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, और तीसरा है धर्म की संस्थापना के लिए। अनुवाद, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। ये फिर से शब्द क्यों है? क्योंकि धर्म की अब ग्लानि हो गई है तो उसको दोबारा से स्थापित करना, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। कमेंट्री, गीताभूषण कमेंट्री। मान लीजिए प्रश्न करें, परंतु आपके भक्त राजर्षि इत्यादि भी अधर्म का नाश करने और धर्म की ग्लानि को रोकने के लिए प्रकट होते हैं, तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि आप ऐसा करने के लिए प्रकट होते हैं? पिछला वाला श्लोक क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिथानम अधर्मस्य तदात्मनाम सजाम्य हम। और इसको यहाँ पे लिंक क्या बना रहे हैं कि यह तो कार्य आपके जो रिप्रेजेंटेटिव कहा जाए राजा है, राजर्षि वह कर सकते, तो आप क्यों करते हैं? तो ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये मुख्य कारण है भगवान के आने का। मेरे भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त मेरे रूप और गुणों का आस्वादन करने में निरत रहते, निरत का मतलब लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उनकी अविद्या नष्ट हो चुकी है और वह भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि के माधुर्य को अनुभव कर पाते हैं। तो महाराज जी कई बार उदाहरण देते हैं रेडियो वाला, अगर रेडियो ठीक है तो जो क्या कह सकते हैं उसका जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है वह आप उसको पकड़ लेते हैं। और इसी तरह टीवी का एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है, निराकारवादी का एग्जाम्पल इस संबंध में दिया जाता है, जब भी देखा पहले टीवी में सिग्नल नहीं आता था तो झिलमिल झिलमिल होता था, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता था। और अगर आपका सिग्नल ठीक है तो बहुत सुंदर रूप सारा पिक्चर सब दिखाई पड़ता है। तो जिसकी अविद्या नष्ट हो गया वह भगवान के नाम रूप गुण लीला के माधुर्य को समझ पकड़ता, इसलिए निरत रहता है। निरत मतलब लीन, लीन कह सकते हैं एक दृष्टि से, लेकिन निरत का मतलब तो सिम लगा रहना, छोड़ने का मन नहीं करता। इसको उदाहरण आप भागवत में सुनते हो, प्रथम स्कंद के ही प्रथम अध्याय में ही सुनते हैं ना, वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे ये शुण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। सुने हैं हम? अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं लेकिन हम तृप्त नहीं होते हैं उत्तम श्लोक विक्रम, भगवान कृष्ण के विक्रम यानी उनकी महिमा को सुनने से। तो क्यों सुन नहीं होते हैं? यश शुण्वताम, क्योंकि हम सुन रहे हैं और सुनने में कभी कान भरता नहीं, पेट भर जाता है कितना भी अच्छा खाए, लेकिन सुनने में कान नहीं भरता। और रसज्ञ हैं हम, रस को जानते हैं भगवान की कथा का रस क्या है, और स्वादु स्वादु पदे पदे हर पद पे हर शब्द पे उनको सुख प्राप्त होता है, ठीक। निरत रहते हैं वे, मेरे रूप का साक्षात्कार करने की आकांक्षा रखते हैं और ना देख पाने के कारण व्यग्र हो जाते हैं। इसलिए व्यग्र का अर्थ समझते हैं आप लोग? जैसे आपने देखा है कृष्ण हॉल में प्रसादम के पहले लोग व्यग्र हो जाते हैं, 9 बजे प्रसादम का समय आता है तो महाराज बोलते ना भूखा साधु बाघ बराबर वाला, तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाना ना मिले तो व्यग्र हो जाता है, परेशान हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। इसलिए उनकी इस व्यग्रता जनित दुख को दूर करने के लिए मैं अपने आकर्षक रूप को साक्षात प्रकट करता हूं। तो यह कारण नंबर एक और यह अर्थ हुआ साधुओं के परित्राण का। ठीक है, वस्तुतः साधुओं को इस जगत का दुख भी महसूस नहीं होता, जो असली साधु जो भगवान के भजन में क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करने से उनको सुख प्राप्त होता है। कृषाग्नि हमने सुना, ये भक्ति का साधना भक्ति का ही है लक्षण है कि सारे दुखों का निवृत्ति हो जाती। तो अब पहला कारण भूत क्या है, कारण एक भूत नहीं कहना चाहिए, कारण क्या हम देख रहे हैं? भक्तों को जो उनके स्वरूप को देखने के लिए व्यग्र रहते हैं, भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। और प्राय समाज में लोग क्या बोलते रहते हैं कि हम भगवान निराकार हैं, तो सुन करके भगवान के भक्त बहुत दुखी होते हैं। अच्छा, एक और अद्भुत बात है कि भक्तों को तो भगवान के रूप की अनुभूति होती है, लेकिन बाहर के लोगों की अनुभूति नहीं होती है, और उस प्रकार का हल्ला करते रहते हैं कि भगवान निराकार हैं, तो उससे भक्तों को कष्ट होता है। ये उदाहरण है अद्वैताचार्य जी का। अद्वैताचार्य जी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि सभी लोग इस प्रकार से अभक्त बने हुए थे, और वह यहां तक बोलते थे कि अगर ये लोग भक्ति नहीं करेंगे तो मैं मतलब महाविष्णु के रूप में चक्र चला के सारे यवनों को मार दूंगा अगर, लेकिन पहले वह भगवान चैतन्य महाप्रभु को अवतरित कराए। दूसरा कारण, मैं रावण और कंस जैसे दुष्कृतियों का नाश करने के लिए ही प्रकट होता हूं। अब इस पर प्रश्न किया जाएगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। जो मेरे भक्तों से द्रोह करते हैं और जो मेरे बिना किसी के द्वारा भी मारे नहीं जा सकते। अब आप लोगों को उत्तर देना है, रावण के संबंध में उसको ऐसा क्या वरदान प्राप्त था जिसके लिए भगवान को ही आकर के उन्हें मारना पड़ा? किसी को पता है? okay, माइक दीजिए। रावण को ऐसा क्या वरदान प्राप्त था?
उसकी मृत्यु मनुष्य साधारण मनुष्य के द्वारा होगी, तो भगवान मनुष्य का रूप लेकर आए,
मनुष्य के ही रूप के द्वारा होगी, तो इसलिए भगवान मनुष्य के रूप लेके आए। और कंस का संग क्या था? कंस के संग क्या दिक्कत थी? इसीलिए मैं सोच रहा हूं, लीला का स्मरण करेंगे तो हम शुद्ध होंगे। सीधी सीधी बात है, वहां तो देवताओं ने सीधे बोला था कि देवकी का आठवां गर्भ ही आपको मारेगा, तो इसलिए भगवान आए सीधे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक जगह मुझे और स्मरण आ रहा है कि कंस को कोई मारने वाला था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। एक जगह लीला में वर्णन आता है, फिर बोला कि नहीं भगवान आएंगे उसको मारेंगे, मैं अभी याद नहीं आ रहा कौन। नहीं, रावण के संग हुआ था शायद, रावण हाँ, कोई उसको मारने के लिए आया था, तो बोला कि नहीं भगवान आएंगे मारेंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन से। तो भगवान स्पष्ट रूप से आते हैं। और हम असुर का अगर स्मरण करें तो असुर का मतलब असुर के संग हुआ, जैसे भगवान का भी हिरण्यकश्यप के संग भी वरदान भगवान को मतलब उसको वरदान प्राप्त, भगवान ही आके उसको मारे। अच्छा, और हिरण्याक्ष को भी कोई नहीं मार सकता था, हिरण्याक्ष को भी कोई मार नहीं सकता था। हिरण्याक्ष भी इतना शक्तिशाली था, वरुण देव के पास गए, वरुण देव बहुत बड़े योद्धा थे, और बोला मुझे वरदान चाहिए, तो क्या चाहिए? आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो कहता है अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ इसलिए आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन आपको मारने वाला कोई आएंगे ऐसे करके। ठीक है, कारण नंबर दो है, ऐसे असुरों को मारने के लिए आते हैं जिसको कोई नहीं मार सकता। वैसे कभी कभी लोग प्रश्न करें, अभी इतने असुर बढ़ गए हैं, भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये असुर तो मलेरे से मर जाएंगे। जो मैंने सुना, नेपोलियन इतने बड़े असुर थे लेकिन वो मलेरिया से मर गए, तो भगवान को आने के लिए जरूरत नहीं है, इतने बड़े असुर नहीं है कि उनको मारने के लिए भगवान स्वयं आए। ठीक, कारण दो क्लियर। केवल मेरी अर्चना और ध्यान के लक्षणों से युक्त शुद्ध भक्ति योग रूपी धर्म और वैदिक धर्म का प्रचार करने हेतु मैं प्रकट होता हूं, क्योंकि यह और किसी के द्वारा स्थापित नहीं हो सकता है। यह कारण नंबर तीन थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको समझना पड़ेगा। यह आपको श्रीमद् भागवतम में माता कुंती की स्तुति से भी मालूम चलता है, श्रवण स्मरण अर्हाणी, आपका श्रवण स्मरण पूजन इत्यादि के जो शुद्ध भक्ति का पद है इसको स्थापित करने के लिए आप आते हैं। श्लोक क्या है? शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमां पदाम्बुजं। शुण्वन्ति मतलब सुनते हैं, सुनना नहीं, जो सुनते हैं, बहुत सारे सुनते हैं। गायन्ति गाते हैं, गायन्ति शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति, कोई सुनने वाला नहीं है, गाने के लिए मतलब किसी को बोल नहीं सकते तो खुद ही गुनगुनाते रहते, उसको गृणन्ति हो गया। अभीक्ष्णशः मतलब लगातार, स्मरन्ति मतलब स्मरण करते हैं और नंदन्ति स्मरण करके बड़ा प्रसन्न होते हैं, या कोई और बोलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। ये पांच प्रकार के इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, तव हितम जना हित, क्या बोले तवे हितम जना, हित का अर्थ होता है भगवान के कार्य के लाभ कर्म। तो जब तक भगवान यहाँ पे आएंगे नहीं, कुछ लीला करेंगे नहीं, तो लोग गाएंगे क्या? और बहुत सारी लीला करनी होगी ताकि लोग को पास गाने के लिए बहुत सारा कुछ कह सकते हैं मटेरियल हो, मटेरियल विषय है, विषय ठीक। तो क्या होगा, तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, वही आपके चरण कमलों को देखेंगे। और क्या है आगे शब्द, अचिरेण, बहुत लंबे समय के बाद नहीं, बहुत जल्दी ही देखेंगे। और तएव मतलब वही देखेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं देख सकेगा। तो इस शुद्ध भक्ति का पथ स्थापित करने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ेगा? ये जो मैंने श्लोक समझाया, श्लोक समझ में आ रहा है कि जो कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को गाता है, सुनता है, स्मरण करता है, आनंदित होता है, तो ऐसा व्यक्ति ही बहुत जल्दी भगवान को देखेगा। तो उसके लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी भगवान को आने की क्या जरूरत है? जब भगवान आएंगे, लीला करेंगे, तब तो उनकी हित यहाँ पे जगत में प्रकाशित होगा, नहीं तो मालूम कैसे चलेगा भगवान क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये कारण है, एक कारण। दूसरा, वैदिक धर्म का प्रचार का मतलब हो गया वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने के लिए। इसी को भगवान अभी आके बोलेंगे, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म भागश। तो भगवान स्वयं आकर के उसको सृष्टि करते हैं, इन द सेंस स्वयं का अर्थ है कि उसको स्थापना करते हैं जब उसमें कोई गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हो दशम स्कंद में क्या है, आक्रांत भूरी बारे ना, या प्रथम स्कंद में है, वो मतलब जो दैत्य रूप में थे, राजा तो थे लेकिन वास्तविक रूप से दैत्य थे, तो भूभार बने हुए थे, तो उनको फिर ठंडा करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान आए, क्योंकि वह वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर रहे। आप लोगों को पता ही होगा कि कंस किस प्रकार से गायों का वध कर रहा था, ब्राह्मणों का वध कर रहा था, क्योंकि कारण क्या बताया था उसने इस प्रकार से करने का? ब्राह्मणों और गायों को मारने का कारण क्या बताया था, को याद है? बताइए।
क्योंकि गाय से घी होगा और ब्राह्मण घी से यज्ञ करेंगे, हाँ। और देवताओं को और भगवान को मतलब उसका भाग मिलेगा,
भाग मिलेगा, तो रोकने के लिए पुष्ट होंगे। तो इस प्रकार से उसकी मति थी, तो हमेशा से इस प्रकार के लोग रहे हैं, तो उसको ऐसा वो करने के लिए। तो दो प्रकार के धर्म कौन से हैं जिनको भगवान स्थापना कर रहे हैं, एक वर्णाश्रम का और एक भागवत धर्म की स्थापना करने के लिए। ठीक, यह मेरे प्रकट होने के तीन कारण हैं। जब भी आवश्यकता होती है तो मैं युग युग में अवतरित होता हूं, तो स्पष्ट है। दुष्टों का वध करने से भगवान हरि में वैषम्यता का दोष उपस्थित नहीं होता है। मैं समझाता हूँ, इसीलिए पहले पूरी लाइन पढ़ूंगा। क्योंकि मोक्ष आनंद लाभ देने के द्वारा वह भगवान के अनुग्रह रूप में परिणमित हो जाता है। समझ में आया? वैषम्यता का मतलब है आप मेरे मित्र हो और ये मेरे शत्रु हैं, तो शत्रु को मारूंगा और मित्र को प्रेम करूंगा। ये जगत में हम खूब देखते हैं, तो हम जब सोचते हम उसी प्रकार सोचते हैं कि भगवान अगर किसी को मार रहे हैं तो वो उनको शत्रु रूप में मार रहे। देखिए, समझ लेना चाहिए कि भगवान इंद्रियों के भी परे हैं, तो अस्त्रों के परे तो बिल्कुल हैं,
और मार के भी उद्धार कर देते हैं ना।
हाँ, तो भगवान को कोई छू नहीं सकता है, पकड़ ही नहीं सकता, मन से ही नहीं पकड़ सकता, अस्त्रों से क्या मारेगा भाई। आप मुझे तो किसी से भय तब लगेगा, शत्रु तब मानूंगा जब आप मेरा कुछ कर सकते। ठीक भाई, हम अगर मच्छर को भी देखते हैं, कभी कोई मच्छर को मार देता है, इसी भय से ना कि मच्छर मुझे काट लेगा। लेकिन एक सीधी सीधी बात है, अगर आप मच्छरदानी के अंदर हैं तो आपको भय नहीं है, मच्छर हो या नहीं हो। तो भगवान तो पूरी तरह से दिव्य स्थिति में है, उनको कौन छू सकता है, उनको वो पकड़ ही नहीं सकता, तो भय का कोई प्रश्न नहीं उठता भगवान के लिए। और प्लस भगवान सभी कोई भगवान के अंश है, तो भगवान तो किसी से द्वेष नहीं करते। तो यही बात बोल रहे हैं कि असुर का जब यहां ऐसा लग रहा है कि दो कार्य कर रहे हैं, कि भक्तों को प्रेम दे रहे हैं और असुरों को मार रहे हैं, लेकिन असुरों पर भी भगवान कृपा करते हैं। प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं, गॉड इज ऑल गुड, ऑलवेज गुड, भगवान हमेशा अच्छा करते हैं, भगवान किसी का अहित चाहे भी तो भी नहीं कर सकते। स्पष्ट है, अगर उसमें कुछ डाउट आपको लगे, ठीक है, भगवान अगर चाहे भी तो कभी किसी का अहित नहीं कर सकते, तो इसलिए वैषम्यता का दोष नहीं आएगा। इस वैषम्यता का अर्थ समझ लीजिएगा, ये चीज सातवें स्कंद को शुरुआत करती है, कि आप बोल अरे अभी आप छठे स्कंद में हुआ था ना कि वो इंद्र का पक्ष ले रहे हैं, असुरों को मार रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान विषम है, लेकिन भगवान विषम नहीं है। ठीक है, ओके, तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? हिंदी कौन पढ़ लेते हैं ठीक से? अनंत कृष्ण प्रभु ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए अनंत कृष्ण प्रभु हमारे स्टैंडर्ड रीडर बोला भी नहीं अभी आपने, ठीक है आप पढ़िए प्रभु जी को दीजिए, जल्दी दीजिए नहीं तो मैं फिर पढ़ता हूँ। हाँ मोहन को दीजिए। भगवद गीता के अनुसार प्रभुपाद जी की तात्पर्य, इससे पहले आगे बढ़े हम तीन कारण जान लें। एक कारण क्या है? भक्तों को अपने सुंदर रूप का दर्शन देने के लिए, लीला इत्यादि करने के लिए। दूसरा, असुरों को मारने के लिए जिन्हें कोई मार नहीं सकता। तीसरा, दो प्रकार के धर्म, भागवत धर्म भक्ति का धर्म, श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को स्थापित करने के लिए, और एकदम स्पष्ट तात्पर्य।
भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है।
हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना खोल खोल के क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि साधु का अर्थ सोचते हैं कि दाढ़ी लंबी है, पहली चीज हम ये सोचते हैं। साधु खिला रहे हैं मतलब उसकी दाढ़ी बहुत लंबी होनी चाहिए, जटा होनी चाहिए, इतना भव्य है वह साधु होगा। लेकिन यहाँ पे साधु का अर्थ क्या है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी अपनी भावुकता में बोल रहे हैं या कोई प्रमाण है कि साधु मतलब भक्त? क्या प्रमाण है? चलिए हम भागवत से नहीं ले रहे अभी, खाली भगवत गीता से बताइए जहां भगवान ने बोला है साधु। देखिए हाँ, निरंतर भक्ति में लगा साधु कहते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। कोई सुदुराचारी भी क्यों नहीं हो लेकिन केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन कर रहा है, शुद्ध भक्ति के पथ में लगा, उसको भी साधु रेव, उसको भी साधु ही मानो। तो सदाचारी भक्त को कहना क्या फिर? कितना साधु मानना चाहिए? ठीक है।
अधार्मिक अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए।
ये श्लोक समझ में आ रहा है? अभी हमने कोट किया। यस।
दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना मृत की परवाह नहीं करते,
भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते। यस। ऐसे तो बात ये बहुत सीधा बहुत बोलते हैं, कोई कृष्ण की शरण नहीं लिया है मतलब दुष्कृति बात। और प्रभु जी कहते हैं हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम खराब नहीं बोल रहे हैं, प्रभु भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अरे भाई साहब वो फिलोसफर हैं, ये हैं वो हैं, नहीं 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 भगवान की शरण ले रहा है, कहते नहीं तो फिर दुष्कृति बात। और भक्त है भगवान की शरण ले रहा है, कदाचित थोड़े दोष भी है उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। जैसे चंद्रमा में अगर कुछ दाग हैं, दाग तो होते हैं, फिर भी वह पूरे विश्व को ठंडी किरणें दे सकता है कि नहीं? ये आचार्य लोग उस श्लोक में टीका करते हैं। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? क्या टीका है?
चंद्रमा में
बस खाली हम लोग गर्दन फिलाएगा तो पड़ेगा। हाँ सब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, इधर बैठिए। चंद्रमा में अगर स्पॉट है, स्पॉट तो होते ही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के लोगों के जीवन से वे अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता है ना? ठीक पढ़िए।
ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विश्व विभूषित क्यों ना हो।
आप ऐसा गुजराती पढ़ रहे हैं। देखिए सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो, प्रभुपाद जी इसको उदाहरण देते हैं कई बार कि अरे हमने अपने आंखों से देखा कैसे, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था आपने भी देखा होगा शायद कि जो टीचर है वो जस्ट रूम के बाहर अपने हमने तो देखा सिगरेट फूंकता है उसके बाद क्लास देता है। आपके यहाँ पता नहीं ऐसा होता था कि नहीं? हमारे तो खूब देखा हमने जस्ट रूम के बाहर। तो क्या तुम्हारा चरित्र डेवलप हुआ बताओ इतना पढ़ करके? और प्रभुपाद जी तक देखते हैं कि इस्कॉन में सामान्य सा भक्त पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, हरि नाम जप करता है, सारी बुरी आदतें वह त्याग देता है। तो यही स्पष्ट है कि सांसारिक शिक्षा। और जहां तक देखे कंस और रावण भी कितने बड़े पंडित थे लेकिन कोई आचरण में अच्छा नहीं रहा वो, ठीक है ना?
इसके विपरीत यदि कोई शत प्रतिशत कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है।
ये अर्थ समझते हैं 100% शत प्रतिशत कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, इसका अर्थ समझते हैं क्या है? माइक दीजिए प्रभु जी को, ये थोड़ा समझ लेना चाहिए, शब्दों का अर्थ समझते चलना चाहिए।
मतलब जो शुद्ध भक्ति का जो डेफिनेशन है, ज्ञान कर्म से अनावृत होके पूरी तरीके से लगा मन कर्म वचन से।
हाँ, मन से वचन से कर्म से वह निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ। ठीक। जहां तक ये थोड़ा सा टाइप नहीं ठीक से, जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, यस,
भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने,
देखिए ये आप समझ रहे हैं ना, कुछ असुर ऐसे थे जिनका केवल भगवान ही वध कर सकते थे, तो वो उस तरह के असुर अब नहीं है, तो इसलिए भगवान को व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अनुचर या और भक्त लोग भी उनका वध कर सकते हैं या अन्य समय में भी वध किए हैं, ठीक है,
किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं।
तंग का अर्थ केवल फिजिकल टॉर्चर ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा खराब बात ये लगती है कि जिसको आप प्रेम करते हो और जो बहुत सदगुण संपन्न है उसमें दुर्गुण कोई निकाले। जैसे आपको पता हो, मैंने कई बार चर्चा किया है, महाप्रभु बनारस में आते हैं तो प्रकाशानंद सरस्वती उनकी बहुत निंदा कर रहे होते हैं, अरे ये तो भावुक है, ये है, इसे तो वो जानता नहीं है, ये तो पागल हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें, पागलों की तरह नाच रहा है। तो यह सुन करके जो ब्राह्मण उनके पास गए थे, महाराष्ट्र ब्राह्मण जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उनको बहुत दुख हो रहा था, तो फिर उन्हें इच्छा करी कि महाप्रभु जाकर के आप उनका उद्धार करिए। और इसी प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में महाप्रभु बंगाल में बहुत क्रोधित हो रहे थे कि यह मेरे स्वरूप को कह रहा है मैं निराकार हूं, इस अपराध के कारण मैं उसे कोड़ दिया है, लेकिन समझ नहीं पा रहे। ये आप शास्त्र पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट महाप्रभु चैतन्य भागवत बोल रहे हैं कि ये मेरे इतना सुंदर रूप है, ऐसे खंडन कर रहा है, इसको मैंने कोड़ दिया है लेकिन समझ नहीं पा रहा। तो हम ये देखते हैं कि जब कोई इस प्रकार की बात सुनता है भक्त की, भगवान निराकार है, ये तो उसको बहुत दुख होता है। तो भगवान इस प्रकार से आकर के अपने बारे में प्रमाणित करते हैं कि देखो मेरे भक्त का अनुभव है वो सत्य है, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, मतलब मैं निराकार हूं इत्यादि। यस,
असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था।
कभी आपने सोचा है कि माता देवकी और वसुदेव को कितना कष्ट उठाना पड़ा कृष्ण को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने के लिए? जो तपस्या ने पिछले जन्म में करी सो तो करी, इस जन्म में भी अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा, और हम लोग खाली हाँ ना करते रहे, हम बोलते रहे, ब्रह्मचारी होकर के हम क्या समझेंगे, और अच्छा है कि हम शादी नहीं करें, लेकिन फिर भी ये हम समझ नहीं सकते कि अपने सामने एकदम नवजात शिशु को इतनी बेरहमी से मार देने का दुख कितना होता है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते ना। लिटरली पागल हो जाना चाहिए, और उसके बाद कोई सोचेगा क्या, अरे अब हम अगली बार जन्म ही न दें, अगली बार जन्म देंगे फिर बच्चा मर जाए। मेरे महाराज इस बात को समझा रहे थे, बहुत अच्छा प्रवचन था, स्वाभाविक होगा ना, अरे भाई हम बच्चा पैदा करेंगे इतना कुछ, और बच्चा पैदा करना ऐसा तो नहीं होता कि रोटी बनाया, दाल चबाना, चावल बनाना, कितना उसमें माता का शरीर का भी कितना उसमें कह सकते हैं शक्ति है उसमें अर्जित, मतलब जाती है ना, और उसके बाद वो तुरंत मार दिया जाएगा बच्चा। तो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत आसानी से, मतलब बड़ी आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, ऐसे कैसे होगा, कृष्ण बहुत परीक्षा लेते हैं ना, अपने शुद्ध भक्तों की, अपने माता पिता की इतनी परीक्षा लिए और हम आपको ऐसे छोड़ देंगे। एक बार एक मैंने सुना था, ये मतलब कथा तो हमने पढ़ी नहीं कहीं, लेकिन अच्छी बात थी कि शिक्षा अच्छी थी कि एक व्यक्ति आए, सब लोग भगवान के पास आ रहे थे, भगवान ये चाहिए ठीक है ले लो, भगवान ये चाहिए तो ये ले लो, भगवान वो चाहिए ले लो। तो एक भगवान एक व्यक्ति बोला, वो उसको बहुत देर से वेट करा रहे थे, तो उससे व्यक्ति ने पूछा कि ये मैंने सुना है लेकिन शिक्षा अच्छी है, तो कि भगवान इसको वेट क्यों करा रहे थे देर से, सभा सबको तो आपने जल्दी जल्दी वरदान दिया, तो कहता है ये मेरा प्रेम चाहता है तो प्रेम चाहने वाले को थोड़ा वेट कराता हूँ क्योंकि वो मुझे ही चाहता है। वैसे सिद्धांत गलत नहीं, सिद्धांत तो बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी मुक्ति मुक्ति जैसे छूट जाए कृष्ण तो छोड़ दे देते हैं, प्रेम को छुपा कर रखते हैं, तो प्रेम थोड़ा देने में समय लगता है, नहीं तो क्या दिक्कत है, भगवान कल ही आपको बस जीव से शुद्ध नाम प्रकट हो जाए, सारी आपका सारा अनर्थ सब खत्म, सारा खत्म, और एक दिन ऐसा भी होगा, लेकिन अभी तो भगवान आपको संघर्ष करा रहे हैं, हर भक्त को करा रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत है। तो और कितनी अद्भुत बात है ना, कई बार अपने जीवन में आप अनुभव करेंगे आपको परेशान लोग केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भक्त हो, केवल इसलिए, और कोई कारण नहीं, केवल आप भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं इसलिए परेशान करेंगे, स्पेशली अगर कोई प्रचार कर रहे हैं आप, देखो ना रशिया में वगैरह में कितना भक्त पर, वो भक्तों को परेशान किया गया। ठीक है, बढ़िया।
अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए।
ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इस जगत में भी बहुत बार कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है ना, चलो अब वहां जा रहे हैं तो ये काम तो होगा ही और साथ में ये काम भी कर लेंगे, करते कि नहीं, बल्कि दो तीन काम भी एक साथ कर लेता है व्यक्ति, जब ऐसे कहते हैं अनुसंगिक, मुख्य रूप से ये कार्य कर रहा है साथ में और अन्य कार्य भी कर लेंगे, तो मुख्य प्रयोजन है भगवान के भक्तों को सुख देना। और आप समझ ही रहे होंगे कि देवकी की क्या, थोड़ा सा देवकी की चेतना में अगर जाएं तो क्या उनकी, मतलब इंग्लिश में कहेंगे एंटिसिपेशन, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, उत्कंठा है कि कृष्ण मेरे बच्चे बनेंगे, कृष्ण मेरे बच्चे बनेंगे, कृष्ण मेरे पुत्र के रूप में आएंगे, तो कितनी उत्कंठा है उसको, इसलिए अपने वो और कुछ दुख को नहीं गिरने, बार बार ये बात आएगी कि जो भगवत प्रेमी भक्त है वह अपनी सेवा में आने वाले दुखों को नहीं गिनता है, है ना, ये प्रेम का मुख्य लक्षण है। और जो कोई भी दुख आते हैं उसको भी उससे उसको सुखी होता है सेवा में, ये प्रेम का मुख्य लक्षण। कोई उदाहरण आपको अगर याद नहीं आ रहा तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का उदाहरण तो बड़ा स्पष्ट है, कितनी वृद्धावस्था में यहां से हो गए चंदन लेने के लिए, एक बार भी सोचे नहीं कि अरे मैं इतना वृद्धा, मतलब भगवान को बोलते अरे भाई मैं इतना वृद्ध हो गया हूं, मेरी कुछ सिचुएशन समझो कैसे मैं जाऊंगा, ये भगवत प्रेम का लक्षण है। प्रभुपाद जी, यस ऐसा नहीं प्रभुपाद जी कह रहे कहां गुरु जी ने आज्ञा दे दी और कोई नहीं मिला मैं ही फंस गया मेरे को जानना पड़ेगा, ऐसे नहीं, बड़े उत्साह के संग प्रभुपाद जी का फोटो आप देखे हो, प्रभुपाद बहुत सीरियस है, तो जो जलदूत के ऊपर उनका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर, तो प्रभुपाद जी से शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी बहुत सीरियस लग रहे हैं आप, कहते नहीं मैं सबसे अधिक प्रसन्न था उस फोटो में क्योंकि मुझे मौका मिल रहा था अमरीका में जाकर के अपने गुरु की आज्ञा का पालन पूरा करने का प्रयास करने के लिए। इस प्रकार वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझना बहुत मुश्किल है, ये प्रश्न नहीं बनेगा कि जब उनको पता है कि बच्चे मरेंगे तो फिर क्यों पैदा कर रही बच्चे, है ना, ये अद्भुत है, यस, एक साथ संपन्न हो गया। पढ़िए।
अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं।
ठीक।
कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों मध्य लीला से
263 से 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। मैं पढ़ता हूँ। सृष्टि हेतु ऐ मूर्ति प्रपंचे अवतारे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान विश्व अवतारी धरे अवतार नाम।
अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है।
एक बात ध्यान रखना चाहिए, इंग्लिश में इनकार्नेशन शब्द और अवतार शब्द अलग थोड़ा होता है। अवतार मतलब आध्यात्मिक जगत से वह अवतरित होते हैं, इनकार्नेशन का अर्थ ही होता है कि वे भौतिक शरीर को ग्रहण करते हैं, ऐसा अब इंग्लिश की एक लिमिटेशन है इसलिए हम ऐसा कहा जाता है, लिमिटेशन मतलब सीमितता है, लेकिन अवतार मतलब वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, ये हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हाड़ मास चर्म का शरीर ग्रहण करते हैं। ठीक है।
ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है, ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं।
अब आपके प्रश्न का भी शायद उत्तर हो ही गया, जो प्रश्न नित्य संदेश था कि क्या वराहदेव उस पर से रहते हैं, तो हम सिद्धांत रूप में समझ सकते हैं कि सभी भगवान के अवतार आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, प्रकट होते हैं, जब तक इसकी कोई अलग से कुछ ना मालूम चले।
जब ये भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है।
जैसे एक छोटा सा आपको मैं प्रमाण दूंगा, बृहद भागवत अमृत में स्पष्ट होता है जब गोप कुमार ब्रह्मांड की तरफ बाहर जा रहे होते हैं तो मोहिनी अवतार जो है उनकी भी एक अलग स्थिति है, कह सकते हैं ग्रह, वहां पे वो मोहिनी अवतार को देखते हैं, तो सभी अवतारों की अपनी स्थिति अपने अपने जगह से आते हैं, ऐसे ही कह सकते हैं।
सभी अवतार का अपना अपना
सभी अपने हाँ सभी अवतारों के अपने अपने एक लोक हैं, उसके वहां से वो अवतरित होते हैं। अब यही हम समझ सकते हैं, बाकी अधिक होगा तो कृष्ण से पूछ लीजिएगा कि कैसे होगा। जब आपको कृष्ण अनंत वैकुंठ आप सुनते हैं गोलोक में है, नहीं गोलोक में रहते जाके पूछ लीजिएगा भगवान आपके अवतार कैसे होते हैं। जब गोलोक पहुंच जाएंगे तब पूछ लेना कि भगवान के अवतार कैसे होते हैं। अभी तो बृहद भागवत में मैं पढ़ रहा था कि जो भगवान के पार्षद हैं वही अपने को वैकुंठ में भी विस्तारित करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण अपने आप को वैकुंठ में विस्तार करते हैं। जैसे श्रीदामा के विस्तार हैं गरुड़ जी, जैसे श्रीदामा के कंधे पे भगवान कृष्ण चढ़ते हैं, ऐसे भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर चढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार से अपने को विस्तारित करते हैं। अब कभी जीवन बचा और समय मिला तो बृहद भागवत की भी हम चर्चा कर सकेंगे, बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं, पढ़ना चाहिए उसको, बहुत सुंदर।
अवतार अवतार इस तरह के होते हैं तथा
अवतार इसी तरह के होते हैं। आप लग रहा है आप कुछ प्रसाद नहीं ग्रहण किया थोड़ा सा।
पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार, इस सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है।
थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को टच कर दूंगा इस मामले में कि पॉइंट्स को क्या क्या कहते हैं। पुरुषावतार कौन से हैं? कारुणदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, शिरोदकशाय विष्णु, और वह उस जगत की सृष्टि के लिए आते हैं मुख्य रूप। गुणावतार कौन से हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी, जो प्रकृति गुणों को स्वीकार करते हैं जगत की सृष्टि के लिए। लीलावतार कौन से हैं? भगवान की विभिन्न लीला, जैसे भगवान श्री राम, मत्स्य अवतार, नरसिंह देव, वो विभिन्न लीला करके वह चले जाते हैं। शक्तावेश अवतार कौन? शक्तावेश अवतार का अर्थ क्या है? जिसमें भगवान अपनी शक्ति को निहित करते हैं। जरूरी नहीं है कि वह जीव हो, ध्यान रखिएगा, जिसमें भी अपनी शक्ति को आवेशित करते हैं वह शक्तावेश अवतार होते हैं। जैसे कि शेषनाग, शेषनाग कोई जीव नहीं है लेकिन वह भगवान की एक विशेष शक्ति है, सारे ब्रह्मांडों को धारण करने की शक्ति। उसके बाद वेद व्यास जी कभी कभी कोई जीव होते हैं, कभी कोई स्वयं नारायण होते हैं। इस समय जो वेदव्यास जी हैं वह स्वयं नारायण है, हमने सुना। पृथु महाराज हैं, पृथु महाराज का था भूभारण शक्ति है, भूपालन शक्ति सॉरी, और परशुराम जी का दुष्ट दलन शक्ति। इस प्रकार से विभिन्न शक्तियां भगवान की इन विशेष अवतारों में आवश्यक होती है। ठीक है, मनवंतर अवतार कौन होते हैं? वामन देव, जो हर एक मन में, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आठ स्कंद में है, चलिए ठीक है। और युगावतार तो आप जानते हो हर युग में आते हैं और युग धर्म की वह स्थापना करते हैं, तो उसे युगावतार कहा जाता है।
किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं।
ये तो मुझे लगता है आप इस्कॉन वाले हो, इसलिए बोलते हो कि भगवान कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम है। आपको कृष्ण अच्छे लगते हैं इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। वेरी गुड, कृष्णस्तु भगवान। जरा श्लोक पर थोड़ा विचार कर लिया जाए, एता चांस कला पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो एता चांस कला पुंसह, जितने भी अवतार हैं वह पुंसह के कला या कला कलांश हैं। तो पुंसह का अर्थ क्या है? गलत। देखो मैंने इसीलिए कष्ट कठिन प्रश्न किया था, ये मुझे अभी कुछ समय पहले पढ़ा। एता चांसा कला पुंसा, पुंसा मतलब भगवान के, ये मैं भी सोचता था बहुत समय तक। एता चांसा कला पुंसा, पुंसा मतलब गर्भोदकशय विष्णु। आप पढ़िएगा, ये जितने भी अवतार हैं यह गर्भोदकशय विष्णु के विस्तार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि कृष्ण का वर्णन आ रहा है उसमें, इसलिए कृष्ण को अलग दिखाया जा रहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समझ में आया? तो फिर से जाके पढ़िएगा, बहुत दिन अभी मैं जब टीकाओं को देख रहा था मुझे समझ में आया, अरे प्रभुपाद इसको लिख रहे हैं, कभी कभी हम समझ नहीं पाते। इस जगत में प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, जगत में जितने भी अवतार हैं वे शिरोदकशय विष्णु या गर्भोदकशय विष्णु के थ्रू आते हैं, अर्थात उन ये जो अवतार हैं उनका स्रोत कौन है? गर्भोदकशय विष्णु या शिरोदकशय विष्णु, एक ही विष्णु है, अलग अंतर नहीं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण गर्भोदकशय विष्णु या शिरोदकशय विष्णु के भी स्रोत है, उत्स। समझ में आई बात? ये बड़ा स्पष्ट रूप से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि कृष्ण अंशी भी नहीं है, अंशी मतलब इन जो अवतार है वो सब उनके स्रोत भी नहीं है, वह अंशी के भी परे अवतारी है, पंजारी बात कि इन गर्भोदक्षाय विष्णु के भी वह स्रोत है। थोड़ा अंतर देखना पड़ेगा, आप लोग वापस टीका में आप देख सकते हैं, समझ में आया। एतासंसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे 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 युगे। क्या चैतन्य महाप्रभु
युगे युगे दो,
हाँ हाँ, एक चैतन्य महाप्रभु के लिए, एक कृष्ण के लिए, ठीक
ठीक।
ये प्रभुपाद जी पूछे थे एक बार व्यक्ति को दीक्षा में, महाप्रभु कौन है, तो बोले कृष्ण के अवतार है। कहते नहीं, वह स्वयं कृष्ण है अवतारी।
भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं।
ये हमने टीका में कौन सा कारण नंबर एक था, बहुत व्यग्र रहते भगवान को देखने के लिए।
अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है।
ठीक है,
भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं, इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं।
हाँ, तो अब ये भी स्पष्ट है, युगे युगे मतलब ऐसा नहीं है कि तीन युग आए और कलयुग इतना गड़बड़ हो गया कि भगवान से मैनेज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, भगवान कलयुग में भी आते हैं। हाँ जी,
जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया।
छोटी सी बात है, क्योंकि महाप्रभु छन्न अवतार हैं, कवर्ड इनकार्नेशन है, इसलिए उनका वर्णन भी शास्त्रकारों ने सूत्र में कवर्ड वे में किया, एकदम स्पष्ट रूप से नहीं किया है। लेकिन यह वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम इत्यादि जो श्लोक है भागवत के, उसके द्वारा स्पष्ट है कि महाप्रभु भगवान है। श्लोक क्या है वो 11, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है 11933 है, स्वराज लक्ष्मीम ऐसे करिए श्लोक है, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी ऐसे करके ऐसे करता है, और सुंदर श्लोक है।
उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी।
एक छोटा सा प्रश्न है, भगवान की लीला चैतन्य महाप्रभु की लीला कब शुरू हुई थी?
550 साल पहले।
और कब समाप्त होगी हुई थी?
जब तक संस्कृति,
ये बात स्पष्ट है कि हम लोग भी उस लीला के भाग हैं। आप कहेंगे प्रभु ये क्या कैसे बोल सकते हैं आप, लेकिन संकीर्तन आनंद पूरे गांव गांव में फैलेगा, तो वह तो अभी लीला समाप्त तो हुई नहीं ना। ये बात हम लोग को बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन प्रभुपा जी बार बोल रहे थे, आंख बंद कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, मैं इंग्लिश में हिंदी में बोल रहा हूँ जो प्रभुपाद ने बोला। तो हमको समझना चाहिए कि यह जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये महाप्रभु की कृपा से ही पूरे विश्व में फैल रहा है। और फिर जब नाके खोली तो देखा सारे भक्त सो रहे तो प्रभुपाद ने कहा इट इज इंडीड सो, ये वास्तविक रूप से ऐसा ही है कि तुम लोग सारे सुवक्कड़ सो रहे हैं, कुछ पता नहीं है, भगवान के बारे में जानते नहीं है, फिर भी प्रचार सब हो रहा है, इनके द्वारा प्रचार कर लेते हैं। तो हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि हम तो बिल्कुल इसे भगवान राम के बंदर है ना, ऐसे ही हमें कुछ पता नहीं है। वास्तवतः देखा जाए तो कदम कानन महाराज बोल रहे थे, अगर आप शास्त्र ज्ञान की बात भी करो तो भी हम लोग को उतना ज्ञान नहीं जितने अन्य जगह, बहुत संस्कृत के लोग जान सकते हैं, लेकिन एक विश्वास है कि भगवान का नाम हरिर नाम है, वो केवलम हरि का नाम आश्रय लेकर के पूरे प्रचार में भक्त लोग लगे रहते। कभी आप सोचिए ना, वो 6 गृहस्थ भक्त गए थे इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए और पूरा हिला दिया प्रचार करने, एकदम अचिंत है बिल्कुल। तो ये विश्वास होना चाहिए और इसमें हमें हर किसी को सोचना चाहिए कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं लोगों को हरि नाम से करंट करने के लिए, ये मुख्य प्रयोजन। इस संबंध में बहुत अच्छी बात है, चैतन्य भागवत में आता है कि देखिए श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को पढ़ने के बाद व्यक्ति को भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। ये केवल एक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस मात्र के लिए नहीं है, भगवान का नाम जब करते हैं तो भागवत में रुचि होती है, भागवत सुनते हैं तो नाम की प्रेरणा करने की मिलती है, दूसरे के पूरक है, काटने वाले नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब नाम की महिमा समझ में आएगी तो नाम को आपको आश्रय भी लेने की इच्छा होगी, है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। यस।
भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों के अंशों में
वर्णित किया गया है
भगवान।
ये एक चैतन्य उपनिषद है, अगर आपने भक्ति वृक्ष की क्लास करी होगी उसमें बताया गया महाप्रभु किस प्रकार से भगवान है, और उसमें स्पष्ट लिखा है ना सची के गर्भ से हम गंगा जी के तट के पास में ऐसे करके उस पर मैं अवतरित हूँ, बिल्कुल स्पष्ट है। एक बात मैं बहुत अच्छी तत्व संदर्भ की उसमें कहीं टीका में पढ़ रहा था कि भगवान का नाम ये हरे कृष्ण मंत्र गीता में भागवत में जगह जगह क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये सोचा है कभी आप? इतनी बढ़िया चीज है तो हरे कृष्ण मंत्र भागवत में क्यों नहीं लिख दिया गया? इन्हें बहुत सुंदर बात बोली कि ये भगवान का नाम इतना गोय है, ये मंत्र इतने गोय हैं कि एकदम स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किए जाते। बड़ा अच्छा था, मुझे बात लगी थी क्योंकि इस हम इसको तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस मंत्र के द्वारा कैसे व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति, वो भी गोलोक की प्राप्ति कर ले। जैसे देखे ना श्रीमती राधा रानी के बारे में भी वर्णन है भागवत में, छुपा के वर्णन किया गया। तो ये सब बातें बड़ी गोई हैं, मतलब हमको हरे कृष्ण मंत्र मिल गया है। कल एक हमारे भक्त बता रहे थे, यही बता रहे थे कि प्रभु जी सब मिल गया है उन लोगों को और बहुत अच्छी चीज मिल गई, उनको समझ नहीं पा रहे कि क्या प्राप्त हो गया। किसी को ब्राह्मण दीक्षा के मंत्र मिल गए तो क्या क्या उसको मिला है सोच नहीं सकता, या हरे कृष्ण मंत्र भी गुरु से प्राप्त हुआ है, क्या कितना बड़ा भाग्य है नहीं समझ पा रहा। तो ये सब बातें हैं और ये गोही अंश में वर्णित किया गया, इसलिए कई बार लोग ऐसा प्रश्न कर बैठते हैं, लेकिन है वाद शास्त्र में, उपनिषद में या कलि संतरण उपनिषद में है, सब वर्णन है, उसको अगर सीखेगा तो उसका लाभ उठा सकते हैं। बढ़िया।
भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है।
मैं इस पे विचार कर रहा था कि मान लीजिए जब हम दुष्ट थे, अभी भी बहुत अच्छे नहीं हुए लेकिन थोड़े अधिक दुष्ट थे, कोई मुर्गा वर्गा खा रहे थे, भगवान कहते चलो जो मुर्गा खाने वाले उनको मैं गला काट दूंगा, तो आपको कैसा लगता? तो यार ये भाई ये अवतार तो बहुत अच्छे नहीं है, तो खाली गला ही काट रहे हैं, लेकिन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जितने भी नलायक लोग हैं उनके हृदय की जो असुर है उसको मार रहे हैं, तो अच्छा अवतार हुआ ना कि नहीं? सबसे अच्छा अवतार तो यही हुआ ना। कभी सोचिए ऐसा अवतार होता कि शिशुपाल जो है माला लेके जप करने लगता, सोचिए कभी शिशुपाल करे ये तो बहुत बढ़िया नाच रहा होता, ये जरासंध भी कहता हरे कृष्ण नाच रहा होता, तो ऐसा अवतार अगर होता तो कितना बढ़िया होता ना। या दंतवक्र और किसी किसको भगवान ने मारा, या फिर यहाँ पे आए थे केशी भैया, तो केशी को मारा था, केशी की जगह हुआ हरे, जबकि केशी भी असुर के रूप में आया, जानवर के रूप में आया और वही जानवरों को महाप्रभु ने डांस करा दिया। तो यह तो वो एक अलग बात है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि भगवान का एक सुंदर नहीं लीला का स्वरूप, तो आप महाप्रभु का भी लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, भाव बिल्कुल अलग है कि जो उसका हृदय का असुर है उसको नष्ट करना है, तो इसलिए भगवान का अवतार बड़ा स्पष्ट बड़ा स्पेशल है। इस समय में बोला गया कि इस महाप्रभु के अवतार, महाप्रभु ने जो अवतार लिया इनके द्वारा किसी का उद्धार नहीं होगा तो कई कल्पों तक उसका उद्धार नहीं होगा, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कहे कि हरे कृष्णा करना डिफिकल्ट है, तो फिर ठीक है सतयुग में पत्ते चबाइएगा कि नहीं, सूखा पत्ता चबाते रहिए, इससे आसान कुछ भी नहीं है। अब ये दिखाता है कि हमारी इतनी पत्ते तपस्या है कि हरे कृष्णा करने में भी आदमी को कठिन लग रहा है। कोई प्रश्न है? माइक दीजिए प्रभु जी।
प्रभु जी आपने बोला कि भागवत पढ़ने से नाम में रुचि आती है।
yes.
और नाम रुचि करते हैं, हरि नाम करते हैं तो हमें भागवत में रुचि आती
yes.
है। ये पॉइंट समझ में नहीं
है। देखिए ये पांचवें स्कंद में प्रभुपाद जी बताते हैं, और एक बार ऐसा घटना हुई, मैं कहीं प्रवचन कर रहा था और हम लोग पांचवें स्कंद की चर्चा कर रहे थे और मैं यही पॉइंट बोल रहा था, और जैसे पन्ना पलटा देखा प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में ये बात बोल रहे। देखिए शुरुआत में भागवत समझ में आती है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर पहले समझिए सीक्वेंस समझिए, कुछ भी समझ में नहीं आता तो लोगों क्या बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी बेसिक फिलोसफी देख करके बोलते हैं आप हरे कृष्ण करिए। जब हरे कृष्ण जब करते रहते हैं फिर धीरे धीरे जब भागवत हम सुनते रहते हैं तो भागवत समझ में आती है। जैसे आप देखो छठा स्कंद में तीसरे स्कंद में नाम की महिमा लिखी हुई है कि जीव से उच्चारण करने मात्र से सारे तपस्या का लाभ मिल जाता है, तो फिर हमको प्रेरणा मिलती है हरि नाम जप करने की, और कैसे वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, बहुत सारी चीजें भक्ति कैसे करना चाहिए सब मालूम चलता है। तो इससे नाम में और रुचि प्राप्त होती, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो लगता है भगवान कितने महान है, तो उनके उनका वर्णन करने की इच्छा होती है। तो यह चीज श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उस श्लोक में बोलते हैं, नष्ट प्रायशु भद्रेशु वाले श्लोक में, अभद्र तात्मधात नाम अपराध है, ये वीक हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं भागवत सुनने से। क्यों? क्योंकि हृदय में तत्व ज्ञान आता है, भगवान का ज्ञान आता है, हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए वो आता है, क्या गलतियां कर रहे हैं वो भी हम देखते हैं कि मैं इस प्रकार के अपराध नहीं करने चाहिए, तो व्यक्ति समझता है। तो श्रीमद् भागवतम से और रजोगुण तमोगुण समाप्त होता है। तो ये भागवतम जो है नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए हमको बहुत मदद करती है। प्रभुपाद जी इसमें एकदम ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, वन शुड कल्टिवेट टेस्ट फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र और रीणी श्रीमद् भागवतम। और एक भक्त बोल रहे थे कि जब तक मैं भागवत पढ़ता नहीं था तो मैं ऐसे जब करता था, बस उसमें रुचि रुचि नहीं आती थी, उस महिमा ही नहीं पता है आपको। जैसे कल ही मैं भक्त से चर्चा कर रहा था कि जो कुछ मंत्र हमको दिए जाते हैं उनकी महिमा ने पढ़ी तो मैं तो जगित हो गया, तो फिर मैं थोड़ा और सीरियस हुआ उसको करने के लिए। और ये लगता था क्या है, तीन बार गायत्री क्यों करें, कभी कभी मैं ऐसा बोलता है, ये जल्दीबाजी में कर देते हैं, लेकिन उनकी महिमा नहीं समझ पा रहे कि महिमा कितना आत्म साक्षात्कार देने वाले मंत्र है। मैं ज्यादा स्पष्ट नहीं कह सकता लेकिन ये सब बात है। तो जितनी महिमा हम समझते हैं किसी भी वस्तु की उसको करने का हमारा जो आग्रह है वो बढ़ जाता है। और यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होगा, जितना यत्न नहीं करेंगे आग्रह नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं होगा। तो मेरा उत्तर तो यही, और कोई आपके मन में?
ये तो पॉइंट समझ में आया कि भागवत पढ़ने से हमें नाम में रुचि होती है। हाँ। सेकंड पॉइंट में कि जब हम हरि नाम करते हैं तो भागवत में रुचि।
अच्छा, ये एक अच्छा प्रश्न है, हरि नाम करते हैं तो भागवत में रुचि कैसे होती है? तो भगवान गीता में भी स्पष्ट बोलते हैं कि इसके जीवन में तपस्या नहीं है, कोई इंद्रिय संयम नहीं है, उसको गीता का ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो अविद्या का नाश होता है, सफाई होती है, तो और कथा में रुचि होती है, कथा और समझ में आती है। मैं एक अपना जीवन के अनुभव बता रहा हूँ। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ने 2008 में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था एक प्रवचन दिया था दूसरे स्कंद पे। बाद में मुझे यहाँ पे अभी एक साल पहले किसी भक्त ने बोला, प्रभु जी महाराज ने दूसरे स्कंद पे चतुश्लोक पे बहुत सुंदर क्लास दी है। अच्छा, तो मैंने सुना महाराज की बहुत सुंदर क्लास थी। बाद में कोई व्यक्ति इसमें प्रश्न कर रहा है, मैंने कहा ये प्रश्न कौन कर रहा है, मैंने कहा मैं ही प्रश्न कर रहा हूँ। मुझे बाद में लगा, समझ में आया कि मैं ही प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन वह क्लास मुझे कुछ भी याद नहीं थी। उस समय मैंने कुछ प्रश्न किया और कुछ कुछ समझ में भी आया था, लेकिन उतना समझ में नहीं आया था जितना कि आज समझ में आ रहा है। ये आप बार बार हरे कृष्ण मंत्र जब करते रहें, अच्छे से जब करते रहें और प्रभुपाद ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको उसमें टेस्ट भी आएगा और आपको अधिक अधिक समझ में भी आता है कि ये जो है हृदय को, समझ पा रहे मेरी बातें, ये स्पष्ट आपको अनुभव होगा कि इससे हरिनाम में बहुत श्रद्धा बनती है कि पहले मैं कुछ शास्त्र समझ नहीं पा रहा था, अब मेरे को समझ में कैसे आ रहा। सबका अनुभव होगा भक्तों का, इस प्रकार से प्रभु जी तो बोलते ही रहते हैं, छह छह महीने में इनका पूरा सारा इक्वेशन समझ में चेंज हो जाती है, जो शास्त्र का अंडरस्टैंडिंग थी वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को काटने वाले नहीं है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हरी कथा कर रहे हैं तो हरिनाम में नुकसान है या हरिनाम कर रहे हैं तो हरी कथा में व्यवधान, ऐसा नहीं, लेकिन हमें इसको निष्ठा से करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? स्टॉप, कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद्गीता की जय।